जब मन नहीं पहुंचता और वाणी नहीं पहुंचती, तो आखिर जब मन वाणी ही तो हमारे दो साधन है परमात्मा को जानने का और व्यवहार जानने का। व्यवहार भी हम जानेंगे तो मन बुद्धि से जानेंगे, परमार्थ भी जानेंगे तो मन बुद्धि से जानेंगे। और वेद में लिखा है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, जहाँ वाणी मन के सहित वाणी निवृत्त है। अब बतलाइए निराशा न हो तो क्या हो, घोर निराशा है कि हमारे पास और साधन क्या है, जब प्रत्यक्ष बाह्य चक्षु से दिखते नहीं और मन बुद्धि उनके निकट पहुंच ही नहीं सकती तो पूरी निराशा होती है। पर इसीलिए कहा मन सहिवादन द्रष्टव्यम, नहीं निराशा मत करो, मन सहिवादन द्रष्टव्यम, वह मन ही से जाना जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा विचार हुआ कि नहीं, मन सहिवादन द्रष्टव्यम, मन से ही परमात्मा जाना जाता है। अब दोनों श्रुति है, ये दोनों श्रुति है, दोनों वेद के वाक्य है, उपनिषद वाक्य है। मन सहिवादन द्रष्टव्यम ये तो वाचो निवर्तन से अप्राप्त मनसा सह, दोनों में विरोध होता है। एक वाक्य है कि मन के सहित वाणी निवृत्त है, एक में है कि मन से देखा जाता है जाना जाता है। तो जब ये श्रुति ने कहा कि मन से युवा अनुद्रष्टव्य, मन से अनुद्रष्टव्य है, मन ही करके जाना जाता है, तब कुछ जीवों को धैर्य हुआ। तो कौन मन है जिससे जाना जाता है और कौन मन ऐसा है कि जो निवृत्त होता है वहां से, भाई मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धम एव च, दो प्रकार के मन है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। जो अशुद्ध मन है उस करके तो अप्राप्य है, और जो शुद्ध मन है उस करके अनुद्रष्टव्य है। दोनों स्थितियों का अर्थ हो गया, दो प्रकार के मन होने के नाते एक मन तो संसारी है, उससे तो परमात्मा दूराति दूर है। एक मन शुद्ध है, जहां कम काम संकल्प नहीं है वो मन शुद्ध है, शुद्ध मन से अनुद्रष्टव्य है, शुद्ध मन से ही अनुभव होता है। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम जिससे परमात्मा को जानेंगे उसको बनाओ। परमात्मा तो बनी बनाई चीज है, उसे हम बना नहीं सकते हैं, किंतु जिससे हम जानेंगे वो साधन हमें बनाना चाहिए। अब आहार शुद्धि पर जोर दिया, अब जो इसको नहीं समझते इसके महात्म को, परंतु आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति लिखा है, आहार शुद्धि से सत्व अंतःकरण की शुद्धि होती। अंतःकरण के चार वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्ताहंकार। अंतःकरण एक चीज है, उसके चार वृत्ति हैं, चार भेद हैं, चार पाद हैं। वो कौन है? मन बुद्धि चित्ताहंकार। मन और बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार एक का भी नाम ले लो तब भी अंतःकरण का बोध होता है। बुद्धि कह दो तब भी अंतःकरण आ गया, केवल मन कहो तब भी अंतःकरण आ गया, अहंकार कहो तब भी अंतःकरण आ गया, और ये सब मन बुद्धि चित्त। तो इसलिए ये जो चार वृत्तियां हैं यही संसार में आपको भरमाया करती हैं। कभी तो मन के झगड़े, नाना प्रकार के, मन को तो भस्मक रोग हो गया है। भस्मक रोग यह हो गया है कि खाते जाओ चाहे जितना खाते जाओ पेट न भरे। वैद्य लोग समझते होंगे भस्मक रोग, बस भस्मक रोग का ही स्वभाव है, खाते जाओ तो मनो खा डालो पेट न भरे। इसी तरह से भस्मक रोग जो है, आते जाओ 10,000 आवे, 5,000 आवे, 10,00,000 आवे, 20,00,000 आवे, कई करोड़ आ जाए, हाय हाय मची हुई है भस्मक रोग, ये कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। यदि किसी के पास 10,00,000 है तो सोचता है 10 करोड़ हो जाता तो बहुत अच्छा, जिसके 10 करोड़ है 10 अरब हो जाता तो ठीक है। अब पीछे को नहीं देखता है कि 10 अरब नहीं, जितना भूमंडल में धन है और जितने भूमंडल में ब्रह्मांड के अंदर स्त्रियां हैं, जितने बच्चे हैं, जितना भोग सामग्री है, सब हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे। मान लिया है असंभव, पर कदाचित मिल ही जाए तो हमारे किस काम की चीज होगी। जब हमें हाय हाय करके मरना है तब तो फिर ये बेकार सी चीज है। जहां से सुख शांति मिला वही चीज है। तो कभी धन से, स्त्री से, पुत्र से कभी सुख शांति किसी को मिली है कोई उदाहरण? भगवान रामचंद्र विष्णु रूप में हुए, विष्णु भगवान, भगवान पुत्र रूप में आए दशरथ के यहाँ। हमारे यहाँ तो सब अवरस्त पुत्र हैं, अर्थात मैथिली सृष्टि से संसार उत्पन्न हुआ, इनसे हम क्या सुख उठाएंगे। जो साक्षात भगवान माया के गर्भ में आए और जगत कल्याण के लिए आए, परंतु प्रत्यक्ष में तो कौशल्या दशरथ के पुत्र कहाए। पर दशरथ की हालत कौशल्या वैधव्य होगा, कौशल्या तो विधवा हो गई और दशरथ मर गए। भगवान रामचंद्र अपना वनवन में गए, परंतु दशरथ को क्या सुख हुआ? भगवान के पुत्र रूप में आने से दशरथ तो हमेशा ही परेशान रहे, वृद्धावस्था में तो चिंतित रहे संतान के बिना, और जो संतान किसी प्रकार से हुई तो थोड़े दिन में वियोग हुआ, उसके साथ उनका प्राण भी चला गया। ऐसा संसार विलक्षण है, जब दशरथ को लाभ नहीं हुआ तो हम भला इन पुत्रों से इन धन से क्या लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए हम परेशान हैं। दिखलाया है कि लोगों को तो अच्छा कम मालूम पड़ता है, थोड़ी सी बातें जो हम कहते हैं थोड़ा खंडन कर देते हैं, तो हम लोगों का तो खंडन करना स्वभाव रहा, मंडन तो जगत का कभी किया नहीं, जीवन में जगत का मंडन करने का अवसर नहीं आया, खंडन खंडन रहा। तो कभी कभी ऐसा उद्गार आ जाता है कि जब हम बहुत बढ़ जाते हैं तो लोगों को कष्ट होने लगता। केवल राग जो होता है सांसारिक पदार्थों में, राग हमारे लिए घातक है, पदार्थ घातक नहीं। हमारे लिए कोई भी स्त्री पुत्र धन कोई भी बाधक नहीं है, केवल हमारे विचार हमको परेशान करते हैं। बस विचार हमारा ठीक हो जाए, मन को काम संकल्प रहित कर दो, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, नाना प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं, वह मन तो अशुद्ध है, और काम संकल्प से रहित जो मन है तो अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो मन को काम संकल्प रहित करो, बस ये पुरुषार्थ की बात, यही धर्म है। काम संकल्प से रहित मन को करो, यही धर्म है। आपका धर्म क्या, कर्तव्य है। काम संकल्प से रहित हो तो कैसे हो, उसके लिए हमारे यहाँ आहार शुद्धि, आहार शुद्धि का इतना बड़ा उदाहरण दिया है कि इससे भारी ज्वलंत तो उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता महाभारत के अंदर, कि भीष्म ऐसे वीर और भीष्म पितामह इस प्रकार के बालक ब्रह्मचारी, परंतु दुर्योधन का अन्न खा करके ऐसी बुद्धि उनकी हो गई कि द्रौपदी का जीर हरण होने लगा, चुपचाप बैठे रहे। एक दुष्टासन द्रौपदी के तीर का हरण करता है, बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है सभा के अंदर, पर भीष्म मौन बैठे हैं। क्या है इसका फल? वो दुर्योधन दुरात्मा का अन्न खाते थे, जिससे भीष्म की बुद्धि भ्रष्ट थी, तमोगुणी बुद्धि थी। अंत में जब मरने लगे, बाण सज्जा पर गए तो लगे ज्ञान का उपदेश करने, तमाम लोग ऋषि महर्षि गए और ज्ञान की चर्चा होने लगी, द्रौपदी बैठ करके थोड़ा सा मुस्कुराई, समझ गए अपनी कमजोरी मालूम हो जाता है, कोई दुराचारी पापाचारी हो जरा हंस दो तो सोचेंगे कि हमारे ऊपर हंस रहा है। ये जो है स्वाभाविक बात है, कहीं की हंसी ऐसी होती है कि उसको खटखटी, वो हंसी ही में अपना अपमान मान लेता है। एक समय एक जमींदार का किस्सा है, प्रत्यक्ष ही वो कहीं बाजार से निकला तो एक बार एक जमीन महाजन ने कहा महाराज पाए लांगी, कहा चिरंजीव रहो, दूसरी बार फिर लौटा तो पाए लांगी, तो उसने समझा कि तकादा है ये। इसे एक बार तो पाए लांगी ठीक है, हम ब्राह्मण है ये वैश्य है, और बाजार से निकले प्रणाम किया, जब फिर लौटे फिर भी नंबरदार पाए लांगी, तब उसने सोचा कि इसने जो इसके हमारा थोड़ा सा हमने रुपया लिया है इससे उसका तकादा है, बताओ पहला जी ने तकादा समझ लिया उसने। जब व्यवहार की बात है तो इसलिए जब द्रौपदी को थोड़ा सा हास्य अस्मित मुख हुआ तो फिर मालूम हो गया भीष्मों को कि हमारी गलतियों का संबंध ये बतला रही है इसकी हंस हसन। कहा कि भीष्म जी बोलते हैं कि बेटी हम समझ गए जिस पर तू हंसी, उस समय जब ये तेरा अपमान हो रहा था मैं उसी सभा में बैठा था, और जो जो काम होता रहा मुझे बुरा नहीं लगता था, पर अब जो है कारण है कि दुरात्मा पतित दुर्योधन का धान्य मैं खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय तमोगुणी रजोगुणी थी, इसलिए न्याय अन्याय का ज्ञान ही नहीं रहा। दुशासन को इतना बलवान नहीं था, भीष्म के एक चपेटिका का काम था, एक थप्पड़ लगा देते दुशासन समाप्त हो जाता, ऐसे ऐसे महारथी बैठे थे और फिर भी द्रौपदी का अपमान हो रहा था, किंतु बुद्धि ही से तो कुछ विचार होता है, बुद्धि अन्न के द्वारा भ्रष्ट रही। तब भीष्म ऐसे ब्रह्मचारी की बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई दुर्योधन का अन्न खाकर और अनुचित को उचित मानने लगे, तो भला आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। इसलिए आप लोगों की बुद्धि यदि तमोगुणी हो जाए और विपरीत ज्ञान हो जाए, अर्थात विपरीत ज्ञान वो है कि जो शुद्ध को अशुद्ध मानना, उचित को उचित अनुचित मानना, यही जो है अज्ञान का चिन्ह। अविद्या का चिन्ह क्या है प्रत्यक्ष में? जो वस्तु विहित है उसको अभिहित मानना, जो वस्तु उत्तम है उसको निकृष्ट मानना। आज क्या हो रहा है? सब कुछ मिथ्या। आजकल यही संसार है, नाना प्रकार के बाद उत्पन्न हो रहे हैं। ये बाद उत्पन्न होना बुद्धि ही का काम तो है, मनुष्य तो वही है। अनेक प्रकार के जो विचार विचार हो रहे हैं, इसी विचारधारा से संसार का पतन भी हो रहा है, इसी विचारधारा से उत्थान भी हो सकता है। इस वास्ते अशुद्ध मन कैसे निवृत्त हो, काम संकल्प निवृत्त हो, उसका यही भाव है कि आहार शुद्धि। आहार शुद्धि की गड़बड़ी, तो आहार शुद्ध हो न होने से मन में तब साफ ही लिखते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, वेद का वाक्य है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है। सत्व अंतःकरण का नाम है, अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, वो चारों वृत्तियों पर आहार शुद्धि का प्रभाव पड़ता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही, यदि सत्व शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो स्मरण शक्ति तीव्र होती है। स्मृति जो है, अभी तो यह है कि कॉलेज में पढ़कर आओ, स्कूल में पढ़कर आओ, घर में विचार करो और टीचर भी छाती पर चढ़ा रहता है, तब भी जो है जब परीक्षा लेने जाते हैं तो फिर वही देवता ही मनाते हैं किसी तरह से। चाहे हम मध्यम श्रेणी में भी आ जाते तब भी अच्छा था, फर्स्ट क्लास में आते, अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं। इसलिए भरोसा नहीं कि बुद्धि काम नहीं कर रही। और स्मृति लंबे सर्वग्रन की नाम प्रमोक्ष, जब स्मृति प्राप्त होती है तो जितनी ग्रंथियां हैं, समस्त ग्रंथि जीव ब्रह्म के बीच की जो ग्रंथियां हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। इसी पर आगे कहा है, छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते, छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर परमात्मा को जानने के बाद हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है और सर्व संशय का छेदन हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जितने संशय हैं, संशय जो है अनेक प्रकार का, संशय का तो महकमा ही अलग है। संशय प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय। प्रमाण है वेद शास्त्र और प्रमेय है परमात्मा। तो परमात्मा वेद शास्त्र परमात्मा के प्रतिपादन करने वाले हैं, बा संसार के प्रतिपादन करने वाले? संसार की चर्चा जीव ब्रह्म के अभेद को प्रतिपादन करती हैं, श्रुतियां अभेद को प्रतिपादन करती हैं, इसी में संशय। इस वास्ते प्रमाणगत प्रमेयगत अनेक प्रकार के संशय विपर्य आदि हैं। तो जब संशय हमारा निवृत्त नहीं होता है तो नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता में देखो, नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो संशयात्मक लोग हैं उनको न यहाँ सुख है और न परलोक की प्राप्ति हो सकती है, संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा जो है उसका नाश ही होता है। इसलिए संशय कैसे निवृत्त हो, आहार शुद्धि पहले, उसके बाद वातावरण का विचार करना चाहिए कि हम परमात्मा के जानने की चेष्टा करते हैं तो विषयी पावर दुराचारी पापाचारियों का संपर्क कम रखें। पहले तो नहीं ही रखें, यदि इतना अवकाश नहीं है तो कम से कम कम तो कर दें, धीरे धीरे कम करते चले, कभी कम हो जाएगा। और बुद्धि में मलिनता है ही, और साथ ही साथ आप लोगों का वातावरण भी उसी तरह का है, तो मन शुद्ध हो तो कैसे हो? और जब तक मन नहीं शुद्ध होता है तब तक परमात्मा के निकट जाने का कोई साधन नहीं। मन शुद्धि का प्रकार यही है, जिस समय आपका मन शुद्ध हो जाएगा, यही परीक्षा है, उस समय आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। आज जो कोई धनी मानी है, एक तो धनी है, दूसरा रोता है बैठ करके, कैसे इतना बड़ा आदमी हो गया है। अब बतलाइए उसे कर्म का फल है, तुमको क्या विपत्ति घेरे है, तुम क्यों रोते हो? इस वास्ते निरर्थक कोई कोई आदमी ऐसे जला करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, तो अपने भाग्य का फल भोग रहा है, तुमको क्या चिंता है? तुम भी धर्म कर्म करो, वेद शास्त्र को मानो, तुमको भी पहले तो जन्म नहीं होगा, जन्म होगा तो तुम इसी प्रकार के होगे जिसके लिए इस समय ईर्ष्या कर रहे हो, मत्सर कर रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं कि पाप का कोई चिंतन करें, वो कोई धनी हो तो चिंतन करना, ईर्ष्या करना कि इसको किसी तरह से हानि पहुंचाओ, ये कैसे आगे बढ़ रहा, ये जो है अशुद्ध मन का कर्तव्य होता है। यदि बुद्धि अशुद्ध है तो इस तरह की बातें होती हैं, और बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भावना उत्पन्न हो सकती है कि परमात्मा यह बलाएं इन्हीं को दे, हम इससे अलग रहें तो अच्छा, ये धन दौलत मान पान प्रतिष्ठा ये कूड़ा करकट इन्हीं के पास रहे तो बड़ा अच्छा, हम तो बचे हुए हैं, ये शुद्ध मन का लक्षण। और अशुद्ध मन का लक्षण है कि ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी के हानि नहीं पहुंचाना, मन वाणी शरीर से जिससे किसी की हानि हो उस काम को नहीं करना, ये शुद्ध मन का लक्षण है। क्योंकि हमारी हाँ हम हानि करें भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, केवल कलंक ही हम लेंगे। यदि उसका रक्षक उसके कर्म है प्रबल है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। प्रहलाद की हानि करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या नहीं किया, प्रहलाद को परेशान करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, पर सब निष्फल होता चला गया। इसलिए यदि आप लोग परमात्मा का सहारा लेते हैं तो प्रहलाद की रजस्वी नहीं हो गई है भक्ति, वो आप भी प्रहलाद ही हैं। केवल भावों की कमी के कारण आप गली गली ठोकर खाते हो, यदि आपके भाव शुद्ध हो जाए, वही परमात्मा प्रहलाद के लिए थे, वही हमारे लिए हैं। हम कूड़ा करकट को भजते हैं, भगवान को नहीं भजते। हमारे भजने के लिए तो बहुत लोग हैं, न जाने कितने इष्ट देव हमारे हैं। कामुक लोग हैं वो अपनी स्त्री को भजते हैं, कोई जो है अनपत्य है संतानहीन है तो पुत्र को भजता है। पुत्रों की बात जो है इस प्रकार की है कि जिसके संतान नहीं है तो वो रात्रि दिन परेशान कि किसी तरह से कोई संतान हो, जब नहीं हुआ तब परेशानी, और हो गया तो उसके पालन पोषण में परेशानी, नाना प्रकार के देवी देवता भूत भवानी पूछते पूछते मरे जाते हैं कि किसी तरह से इसकी रक्षा रहे, मस्जिद में जाएंगे फूंक डरवाएंगे इनकी मुसलमानों की। ये नहीं समझते भलाई मांसाहारी की फूंक से क्या होगा, और देखो तो मस्जिद के सामने हिंदुओं की स्त्रियां खड़ी, ये वासना क्या नहीं करा देती है। एक समय हम पंजाब में थे तो ब्रह्मचारी थे उस समय, तो चाय बहुत पीने की आदत वहां लोगों की, और लाए कुल्हड़ में चाय, तो चाय हो तो हमने कभी पिया नहीं, पर एक दंग हमने कहा कि चाहे चूड़ी चाहे चमाड़ी चाहे नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म है जो चाह न होती भी। यही कह करके हंसते हुए हटाया, हमने कहा चाहे चूड़ी, पंजाब में चूड़ा कहते हैं भंगी को, तो भंगी की स्त्री चूड़ी हुई, चाहे चूड़ी चाहे चमाड़ी चाहे नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म है जो चाह न होती भी। तो साक्षात परमात्मा ही है, तेरे बीच में चाहे जो है यही एक खराबी की चीज है। चाहे हमने नहीं कहा, चाहे कहा। इसलिए हमारे बीच जो अन्याय की चीज है, जो इच्छा है, वो इच्छा ही जो है हमको रात्रि दिन परेशान करती है। पर एक इच्छा प्रबल हो जाए भगवान के मिलने की तो सारी इच्छाएं समाप्त तो हो जाए, कोई इच्छा रह नहीं सकती। और अनुभव आप लोग करो कि जो जो इच्छा आप लोगों ने किया और सब चीजें मिलेंगी, पर उसकी कितनी तृप्ति आपको हुई अपना अनुभव करो, हमारे कहने की जरूरत नहीं। जो जो इच्छाएं आपको हुई वो सब आई, रुपए में दो आने चार आने आई, अनुभव तो हो ही गया, परंतु उन इच्छाओं की पूर्ति से क्या लाभ हुआ? आप नोट करें तो पता चले, यदि एक आना पर लाभ है तो 15 आने दुख आपको भोगना पड़ा। एक आने तो लाभ और 15 आने दुख उठाना पड़ा उन चीजों के लिए। तो इस वास्ते वासना, लौकिक वासना साध्य जो वस्तु है वह तो मिथ्या ही है, कभी हमारे हित की चीज नहीं। जब लड़का पैदा हुआ, पालन पोषण विवाह हुआ, भी हो गया, कुछ पढ़ाया लिखाया भी गया, और कहीं बहू आ गई और कहीं अंग्रेजी पढ़ी आ गई, अंग्रेजी पढ़ी लिए क्या लिखी आई, बस उसने यही कहा कि देखो बात यही है, ये अपने माता पिता को हमने छोड़ा, तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारी तुम्हारी तभी बनेगी जब तुम भी हमारी तरह से बनो। हमने अपनी माता पिता को छोड़ा, तुम भी छोड़ो अपने माता पिता का। बस माता पिता के लिए कोई प्राचीन विचार की हो ऐसा नहीं, बहुत सी ऐसी साध्वी हैं कि सबके विचार ये नहीं है, पर जो अच्छे विचार की हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, कहना क्या है, वो तो ठीक ही है, पर जो इस प्रकार के विचार की हैं उन्हीं के लिए कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, धार्मिक शिक्षा यदि उनको होती तो ये कभी विचार न करती कि अपने माता पिता को तुम छोड़ो तब हमारा तुम्हारा व्यवहार बनेगा। खैर अब माता पिता तो रोते हैं बहू के नाम से, पुत्रों के नाम से, बहू हमारा नहीं, कितने हमारे यहाँ ऐसे प्रश्न आते हैं, कोई बनावटी बात नहीं, कहीं बहू ना बिगड़ गई, सासु का अपमान हो रहा है, कहीं पुत्र ही बिगड़ गया, पिता का अपमान हो रहा है, तो इस प्रकार का दुख रुपए में हम समझते हैं, 100 में 90 इस प्रकार के लोग हैं कि जो अपने पुत्र से पुत्र बधू के पीछे रो रहे हैं, 10 हो नहीं हो तो कह सकते हैं, कोई सामने रोते हैं, कोई हृदय में रोते हैं, कोई तो सामने रोया करते हैं, कोई अपने हृदय में रोते हैं। इसी रोना छुड़ाने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चतुर्थपन में वन में चला जाना चाहिए, चतुर्थपन में जब गृह में रहो अपना बल, ठीक है हम रुपया पैसा कर सकते हैं, तब तक तो गृहस्थ आश्रम में रहो। जिस समय हमें और रुपया पैसा नहीं पैदा कर सकते हैं, तुरंत संसार को तिलांजलि दे दो, इन पुत्रों और पुत्र बधुओं के पीछे रोने के लिए न बैठे रहो। इसी अब ये धर्म है, ये धर्म ने कितनी रक्षा किया कि आप जब बाल्यावस्था थी तब तो कुछ करने लायक नहीं थे, अभ्यास अध्ययन आदि करते रहे, युवावस्था में आपका सर्वस्व रहा, युवावस्था में तो आप लोग मालिक रहे, जो कुछ रहा सो हुआ। जब वृद्धावस्था चली, जब नोटिस आया कि अब चलना पड़ेगा, बाल में सफेदी आ गई कहीं एक दो, बस नोटिस आया, पहले नोटिस आते ही लोग सफेद सफेद हो जाते थे, कान समीप भय कैसा, रामायण वाले जानते हैं, कान के निकट का बाल सफेद हुआ, बस नोटिस पहला नोटिस आया जब छोड़ो घर जल्दी करो तुमको चलना है, पहली नोटिस में ही लोग घर द्वार लड़कों को सौंप करके वन में चले जाते थे। बार्धक्य मनोवृत्ति नाम, जब बार्धक्य का लक्षण हुआ तो निकल गए वानप्रस्थ आश्रम में, या वानप्रस्थ आश्रम में नहीं कहीं एकांत में चले गए, महात्माओं का सत्संग कर रहे हैं और अपना शुद्ध मार्ग बना रहे हैं, परमात्मा के निकट पहुंचने का उपाय कर रहे हैं, और इधर पुत्र बहुत आदितों की कोई गिलानी भी नहीं, हम तो उनके अपमान के लिए रही नहीं गए, जब रहे तो शान से रहे, और जहां शान बिगड़ने का अवसर आए तहां तिलांजलि दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब पहले तो लड़कों के लिए मरे, रात्रि दिन धन पैदा किया और सब उत्पात किया, अनुचित का विचार नहीं किया कि हमारे लड़कों बच्चों के पास थोड़ी संपत्ति हो जाए। जब लड़कों बच्चों को संपत्ति मिली तो लड़के बच्चे अपमान करने लगे, तब उन्हीं के नाम से रो बैठ करके माला फेरो। इसलिए उत्तम पक्ष है कि लड़कों को सौंप करके अपनी अवस्था में तुरंत किनारे हो जाओ, भगवान का चिंतन करो, लड़के बच्चे आपके पुण्य से और भी प्रफुल्लित रहेंगे, और धक्का खाने के लिए गृहस्थी में रहना ठीक नहीं। इसी से यावत वित्तोपार्जन सत्य सावन निज परिवार रखता पश्चात धावत जर जर दे है वार्तांको के निकृत गे है। ये भाष्यकार शंकराचार्य ने कहा है कि यावत वित्तोपार्जन सत्य, जब तक हम धन पैदा करने के योग्य हैं, सावन निज परिवार रखता है, तब तक बहुए चाची बाबा आते होंगे, जल्दी परोसा तैयार करो। इसलिए इस दृष्टि से यावत वित्तोपार्जन सत्य सावन निज परिवार रखता है, जब तक धन पैदा करने में समर्थ रहता है ये मनुष्य, तब तक परिवार के बड़े ही प्रेम करते हैं। वित्तोपार्जन कब करता, जब तक युवावस्था रहती, जब तक कुछ कर सकता, और जब वृद्धावस्था आई तब वित्तोपार्जन करने की शक्ति नहीं रह जाती। तो लिखते हैं कि वार्तांकोप निपृच्छत गेह पश्चात धावत जर्जर देहे वार्तांकोप निपृच्छत गेह। जब वृद्धावस्था आई तब कोई घर में बात नहीं पूछता, बोले कहते प्रभु बैठो क्या देर मतलब की बात तुमसे क्या पड़ी। तो इसी वास्ते भगवान भाष्यकार लिखते हैं यावत वित्तोपार्जन सावन निज परिवार और रक्त पश्चात धावत जर्जर देहे वातांकोपिन पृच्छत गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जब हमें जो पीछे होना है तो हम पहले ही क्यों नहीं इंतजाम कर लें कि जिसको हम कोई दुख देखने की नौबत न आवे। तो ये तो हुआ नालायक पुत्र की बात। अब कहीं लायक हो गया पुत्र, अब नालायक की बात है, पिता माता का अपमान करना ये कोई सुयोग्य पुत्र का काम नहीं है और ये नहीं ये उचित है। परंतु जैसी आजकल कल की रीति भांति है उसी के अनुसार कुछ प्रश्न हमारे सामने ऐसे आते हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो इनसे सतर्क रहो, इन विपत्तियों से कभी भी अपमान सहने का अवसर न दो, जिससे आपके विचारों में यही रहे कि पुत्र का कल्याण हो। जिस भावना से पुत्र को आपने पाला पोसा अंत में आपकी भावना न बिगड़े, इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाओ, अच्छी भावना बनी रहे। यदि लायक पुत्र हुआ कहीं प्रातः काल उठ करके आपका चरण चरण को प्रणाम किया, माता का चरण चरण को प्रणाम किया, तब तो फिर और भी घातक हुआ, क्योंकि आय करके प्रातः काल पुत्र वधु सास के चरणों में प्रणाम करती है, पुत्र अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है, तब राग बढ़ता है, ये भावना बनती है कि बड़ा सुयोग्य पुत्र है, बड़ा लायक पुत्र है। अब जो है जो राग ईश्वर में लगना था तो पुत्र ने हर लिया, प्रणाम करते ही माता पिता गदगद हो जाते हैं कि ये तो क्या कहें, बड़ा ही सुयोग्य बहु और बड़ी सुयोग्य हमारी पुत्र वधु और पुत्र तो बहुत ही योग्य है। अब जो है रात्रि दिन उसी का माला फेरो, रात्रि दिन बस उसी में फंसो, कहीं अंत तक अंत में कहीं पुत्र ही का स्मरण हो गया तो फिर पौत्र होकर घर में आओगे। कहीं जो है मरते समय कहीं पुत्र का स्मरण हुआ तो उसी घर में आओगे, तो पुत्र तो हो नहीं सकते हो, पौत्र होकर आओगे। तो ऐसा काम कोई नहीं कर, क्योंकि कहना इसलिए हो रहा है यंजन वापि स्मरण भावंते चिंते कलेवरम संत नवित कौनते है सदा तद भाव भाविता। गीता का पाठ सब लोग करते हो, गीता में लिखा है कि जिन जिन वस्तुओं का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है उसी उसी वस्तु को दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। तो जब आप पुत्र का चिंतन करते हुए कहीं शरीर छोड़ोगे तो फिर पुत्र के उसी कुल में चाहे उसका पुत्र हो या और किसी का हो अवश्य लेव आना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई प्रेम न करें कि जिससे हमारी हानि हो, पुत्र जो है उसको माने ठीक है, परंतु इतना राग की जरूरत नहीं है, इतना राग बना लो यही तो है अशुद्धम काम संकल्पम। जब ऐसी ऐसी कामनाएं सामने आप ले आते हो इसी से मन अशुद्ध रहता है। जब मन को फुर्सत मिले संसारी जंजालों से तब परमात्मा की तरफ चले, जब संसारी विषयों से मन को अवकाश आप देते नहीं हो बस कपाट बंद करो। जैसे जो चोर घर में घुस गए हैं वो तो घुसे पर बाहर वाले चोर न आने पावे, इस वास्ते कपाट लगाओ। अर्थात इंद्रियां जो है, जो वासना जो विषय वासना हृदय में आ गई है वह तो चोर घर में घुस गया, और बाहर की विषय वासना जो अभी तक नहीं है वो दूसरे चोर है। तो पहला कर्तव्य क्या होता है कि कपाट लगा दो, बस कपाट लगा दो, बाहर के चोर नया आने पावे और भीतर वालों को गिरफ्तार करने की कोशिश करो। पहला कर्तव्य होता है समझ लो कि घर में चोर घुस गया तो क्या करना चाहिए, कपाट पहले लगाना चाहिए। जो वासना जो बाहर की वासनाएं अभी नहीं आई है वो तो आने न पाए, अर्थात जो चोर नहीं घुसा है घुसने न पाए, और जो घुसा है उसको पकड़ के गिरफ्तार करो। अर्थात जो वासना भीतर है उसको तो भगवान की प्राप्ति के लिए सदाचारी बन करके उस वासना को हटाओ और उस वासना को सबको नष्ट करो और बाहर की वासना आने न पावे, क्योंकि वासना ही मुख्य अनर्थकारी है। जैसी जैसी वासना आपकी बढ़ेगी संसारिक वैसे ही उलझन बढ़ेगी, और उतना ही उसी प्रकार से आप संसार से दूर। बहुत माताएं वृद्धा हो गई, मरने को चली, तब भी वो कहती है कि हम पौत्र का विवाह देख लेते तो अच्छा होता। बतलाइए, पुत्र का विवाह तो देख ही चुकी, पौत्रों को देख लेती और पौत्र की संतान भी देख लेती तो और कृतकृत्य हो जाते। कितनी बड़ी दुर्वासना, मालूम पड़ता है कि इन्हें फिर लौट के इसी घर में आना। कितनी बड़ी भूल है, ये नहीं सोचते कि पुत्र का विवाह हो जाए, पौत्र का हो जाए, लड़का भी कुबेर हो जाए, पर हमें तो मुहबा करके 10 दिन में जाना है। बनेगा तो एक कफन दे देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जब तक संसार में वैराग्य नहीं होता है, जब तक संसार का त्याग नहीं होता है, केवल अच्छी अच्छी बातों से कुछ नहीं हो सकता। इस वास्ते वैराग्य का मतलब ही है कि चीज को त्यागो मत, चीज में राग मत रखो।